इल्म का मुझको शौफ अता कर खुदा, इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा। इल्म का मुझको शौफ अता कर खुदा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله। محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اسلام میں کئی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سال جسے قمری سال ہم کہتے ہیں اور بنیادی طور پہ وہ قمری سال ہی ہے، اس کی ابتدا اس ماہ محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، یعنی ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جن میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا حرام تھا اور جس کی تعظیم اور عزت اور تکریم جاہلیت کے زمانے میں بھی کی جاتی تھی۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی 10 تاریخ جو یوم عاشورہ کہلاتی ہے، اس 10 تاریخ کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس کی اپنی ایک عظیم تاریخ ہے۔ اس 10 تاریخ کو دنیا میں بڑے بڑے عظیم واقعات رونما ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا اور حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہونا اور بطور خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، یہ اس کے بڑے بڑے واقعات میں سے ایک ہے۔ اور پھر تاریخ اسلام میں اس کا تعلق بطور خاص اہل بیت اور میدان کربلا میں ہونے والے اس تاریخی واقعہ کے ساتھ ہے کہ جو تا حشر دنیا کے مشہور ترین واقعات میں سے ایک رہے گا، یعنی جس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی میدان کربلا میں ظلم کے ساتھ شہید کر دیے گئے، یہ وہ دن ہے۔ ماہ محرم جیسے ہی آتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں اہل بیت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اہل بیت کی یاد سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی یاد، ویسے تو مسلمانوں کا ایمان ہے، صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت سے محبت، ان کا تذکرہ کرنا، یہ مسلمان کے دین ایمان میں داخل ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام کی عظمتوں کا بیان بھی ہے اور اہل بیت کرام کی فضائل کی آیات بھی ہیں۔ احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں، اپنے رفقا، اپنے صحابہ کی عظمت و شان بھی بیان فرمائی ہے اور اپنے اہل بیت کی عظمت و شان کا بھی بیان فرمایا ہے۔ ان سے بھی محبت کا حکم ہے، ان سے بھی محبت کا حکم ہے، لیکن ان میں کچھ ہستیاں وہ ہیں کہ بطور خاص جن کے ساتھ محبت رکھنے، جن کی عقیدت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ان میں سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی جو ہستی ہے، جو آپ کی ذات مبارکہ ہے، اس کا بطور خاص حکم ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے، حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے، یعنی جو سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرے اللہ تعالی انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل ہیں جو صحابہ کرام کے، اہل بیت کے اور ان سیدین کریمین کے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ بطور خاص اس مہینے میں چونکہ کربلا کا واقعہ ہوا، करबला के अंदर अजीम शहादत का सानिहा हुआ, उसकी जो तफसीलात हैं वो अपनी जगह और बड़ी दर्दनाक तफसील हैं। वो मुसलमान की जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है और जो अल्लाह के इन प्यारे बंदों की सच्ची मोहब्बत रखता है, उसके लिए आसान नहीं है कि वो इन वाकयात को पढ़े सुने बयान करे, क्योंकि उन वाकयात में जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो आजमाइश है, ये बड़ी कठिन है, बड़ी तकलीफ दे है। मुसलमान का दिल उन्हें सुनकर फितरी तौर पे गमगीन हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सब्र का हुक्म दिया, बड़े से बड़ा सदमा हो, बड़े से बड़ी मुश्किल हो, बड़े से बड़ा वाकया हो जाए, हमें हमारे दीन ने सब्र का हुक्म दिया और फरमाया कि सब्र से और नमाज से मदद हासिल करो, और फरमाया कि हम तुम्हें आजमाएंगे बहुत सारी चीजों के साथ, जान माल की कमी के साथ, तो इन सब के बदले में तुमने क्या करना है, क्या कहना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दरसे करबला एक बड़ा मशहूर मौजू है जिस पर बड़ा कसरत से कलाम किया जाता है। इसके ऊपर मैं चंद चीजें अर्ज करता हूं, लेकिन उसके साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें, हम पूरी जिंदगी बहुत सी बातें सुनते हैं, अच्छी से अच्छी बातें, एक से बढ़ के एक बात सुनते हैं, लेकिन इस पर जरूर गौर करें कि इनमें वो कौन सी बात है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई, वो कौन सा दर्स है जिस पे हमने अमल किया, वो कौन सा सबक है जो हमारी जिंदगी और हमारे किरदार का हिस्सा बन चुका है। अगर सारी जिंदगी हम दर्स सुने भी, बयान भी करें, लेकिन हमारे वजूद पे उसके आसार नजर ना आए, हमारे किरदार के अंदर उससे रोशनी नजर ना आए, तो ये शायद इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं रहता। मैदान करबला में जो हुआ और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उस वक्त जो अपना किरदार जाहिर किया, दिखाया और पेश किया है, उसमें चंद एक चीजें बड़ी वाजे और बड़ी नुमाया है। सबसे पहली बात तो यह है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा में एक आरामदेह, एक पुरसुकून जिंदगी बसर फरमा रहे थे। सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक तवील दौरे हुकूमत गुजरा, 20 साल दौरे हुकूमत गुजरा, आप उसमें बड़े सुकून से अपनी जिंदगी गुजारते रहे, इबादत में, रियाजत में, नमाज में, तिलावत में, मखलूक खुदा पर शफकत में, उनकी इसलाह में, उनकी फलाह में और बंदगी के कामों में लगे रहे। 20 साल के इस पूरे अरसे में सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया कि जो इकदाम अनहोना हो, जो उस रूटीन से हट के हो जिससे मुल्क के अंदर एक बहुत जो है वो बड़ी हलचल मच जाए, ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहले खाना के साथ मदीना तैयबा से निकले और वहां से फिर चलते हुए मुख्तलिफ मकामात पर क्याम करते करबला के उस मैदान में आ गए कि जहां पर वो शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए, अपनी जान कुर्बान कर। सब जानते हैं, सबको मालूम है कि वो वाकया ये हुआ था कि यजीद तख्ते सल्तनत पर मुतमक्किन हो गया था, यजीद हुक्मरान बन गया था। वो हुक्मरान जालिम था, फासिक था, फाजिर था, बैतुल माल में खयानत करने वाला था, हलालो हराम की परवाह न करने वाला था, हराम कामों का इर्तिकाब करने वाला था। वो मुल्क और वो सल्तनत कि जो खुलफाए राशिदीन और सैयदना मीरे मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो से चलती हुई आई थी, जहां गालिब इस्लाम की तालीमात थी, जहां गालिब सूरत तकवा की और खौफे खुदा की थी, यजीद ने आके इस्लामी सल्तनत के उस इस्लामी शक्ल सूरत को बदलना शुरू कर दिया, वहां पर फिस्को फजूर को रवाज देना शुरू कर दिया। और जब इतने बड़े पैमाने पर इस्लामी सल्तनत के अंदर ये भूचाल उसने पैदा करने की कोशिश की, तो उसके मुकाबले के लिए और उसके सामने खड़े होने के लिए और फितना और फसाद की उस आंधी को बुझाने के लिए और फिस्को फुजूर की उन गिलाजतों को खत्म करने के लिए सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो रुखसत पर नहीं गए, अजीमत के रास्ते पर खड़े हो गए, मुकाबले के रास्ते पर खड़े हो गए, और इस रास्ते पर खड़े होकर आपने कुर्बानी दी। तो सबसे पहला जो दर्स मिलता है वो ये है कि जब मुल्क में फिस्को फुजूर, गुनाहों की कसरत, मुहर्रमात की कसरत, हराम कामों का गलबा होता जाए, जब मुल्क के अंदर इस तरीके से बेदीनी फैलना शुरू हो जाए, तो उस वक्त खामोश होकर नहीं बैठना बल्कि उसका इजाला करना है। और हैरत की बात यह है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तो लिया जाता है, लेकिन जिस मकसद के लिए वो खड़े हुए थे, जिस बेदीनी और बेअमली और बदअमली और फिस्को फुजूर और बदकारी और शराब नोशी और इस तरह के उमूर के खात्मे के लिए वो खड़े हुए थे, उसी को मुल्क के अंदर परवान चढ़ाया जा रहा होता है, जहां पर याद हुसैन की जा रही होती है, जहां पर इमाम हुसैन का दिन मनाया जा रहा होता है। ये पहला दर्स। दूसरी बात, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला मैदान करबला में जब पहुंच गए और वहां पर आप उन दुश्मनों के सामने, बद्दे मुकाबिल अफराद के सामने खड़े हो गए, आप पूरा वाकया करबला सुन लें, पढ़ लें, जो मर्जी उसको कर लें, उस पूरे इंसिडेंट में, पूरे वाकये के अंदर आपको इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जबान से एक लफ्ज भी बेसब्री का नहीं मिलेगा, शिकवा शिकायत का नहीं मिलेगा, खुदा की बारगाह में यूं शिकायत का नहीं मिलेगा कि मौला मेरे साथ क्या कर रहा है। अव्वल से आखिर तक इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सब्र का पहाड़ बन के खड़े रहे, इस्तकामत दिखाई, बुलंद हौसलगी और बुलंद हिम्मती का मुजाहरा किया, आली हिम्मती का मुजाहरा किया। ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का वो किरदार और वो बाब है जो आज तक हीरों की तरह और सितारों की तरह दरख्शां है, रोशन है और चमक रहा है। फिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बिल आखिर अपनी जान कुर्बान कर दी। ये जान कुर्बान करना ये दलील और ये अलामत थी उस बात की कि जो बंदा मोमिन का वतीरा है, जो अपनी जिंदगी के बारे में वो खुदा की बारगाह में अर्ज करता है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज और मेरी इबादत कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। ये शहादत, ये कुर्बानी, ये जान का नजराना, ये अलामत है उस वादे की जो खुदा के साथ किया, उस खरीदो फरोख्त की जो खुदा के साथ की थी। इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नाह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तुलूना व युक्तल। बेशक अल्लाह ने खरीद ली मोमिनों की जानें और उनके माल इस बदले में कि उनके लिए जन्नत है। ये मोमिन राह खुदा में लड़ते हैं तो मारते हैं और मारे जाते हैं, और इनके लिए बशारत है, और ये बशारत तौरात में है, इंजील में है। ये है इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। तो सईदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की जात के और इस वाकया करबला के जो दर्स हैं वो बहुत से हैं, उसमें सब्र भी है, इस्तेकामत भी है, दीन के लिए कुर्बानी भी है, बेसब्री का कोई जुमला जबान से ना निकालना भी है, दीन खुदा की सरबुलंदी और ताईद के लिए उठना भी है, फिस्को फुजूर का खातिमा भी है, बुराई का खातिमा भी है, जहां जबान से हो सके वहां जबान से किया जाए, जहां हाथ और ताकत से हो सके वहां पर बुराई का खातिमा हाथ और ताकत के साथ किया जाए। यह दर्स, यह दर्स करबला, यह दर्स शहादत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। हम थोड़ा सा अपने गिरेबान में तो झांके, हम बरसों से ये अय्याम मनाते हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को याद करते हैं, लेकिन उनके उस किरदार, उनकी उस इबादत, उनके उस रातों के जागने, उनके नेजे के ऊपर सर बुलंद होते हुए भी कुरान की तिलावत करने, सब्र इस्तेकामत दिखाने, अल्लाह के अपने अपनी जान और अपना माल खुदा के हवाले कर देने और बुराई के खात्मे के लिए उठने और नेकी और भलाई और खैर और दयालतदारी की दावत देने के दुरूस में से कोई दर्स भी हमारी जिंदगी में शामिल है? अगर नहीं है, अगर है तो फबेहा मरहबा, लेकिन अगर नहीं है तो एटलीस्ट कम अज कम कोई तो बात इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कीजिए, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب سوالات کی طرف بڑھتے ہیں.
ندیم شیخ بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ کیا امام حسین کو اپنی شہادت کی پہلے سے خبر تھی؟
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی شہادت کی پہلے سے خبر تھی, بلکہ یہ جو شہادت کی خبر ہے یہ اہل بیت کے درمیان پہلے سے معروف تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ذکر کر دیا تھا کہ آپ کا یہ بیٹا آپ کی امت کے ہاتھوں شہید ہو جائے گا. اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی تھی. اور یہ ساری خبریں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھی, سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تھی, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھی. خود واقعہ کربلا کے اندر وہ روایات موجود ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس میدان پہ پہنچے تو وہاں پر فرمایا گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی خبر دی گئی تھی, جس کا وعدہ کیا گیا تھا.
اسلامی بہن کا سوال ہے, پوچھ رہی ہیں کہ اگر بلی نمازی کے آگے سے گزر جائے یا آ کر بیٹھ جائے تو نماز میں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟
بلی کے نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز پہ فرق نہیں پڑتا. سامنے بیٹھ جائے تب بھی فرق نہیں پڑتا, آگے سے گزر جائے تب بھی فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات ہو سکتا ہے لوگوں کو شبہ یہ ہو کہ ایک حدیث مبارک کے اندر اس طرح فرمایا گیا ہے کہ نمازی کے آگے سے اگر کتا گزر جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو وہ بھی حدیث مبارک دوسرے مفہوم میں ہے کہ جو کمال نماز ہے, جو خشوع نماز ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. حقیقتا نماز تو اس سے بھی نہیں ٹوٹتی. تو بلی جو ہے اس کا تو ویسے بھی احادیث میں ذکر بھی نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ حکم بھی نہیں.
احمد بخش بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اس سوال کا جواب عطا فرما دیں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور نیت میں پیچھے اس امام کے کہنا بھول گیا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟
کہنا بھول گیا تو کہنا تو ویسے ہی ضروری نہیں ہے کہ میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں, یہ کہنا ضروری نہیں ہے.
برکت علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہے یہ من گھڑت ہے, یہ کیا حقیقت ہے؟
واقعہ کربلا کو من گھڑت کہنے والے کو کسی پاگل خانے میں داخل کروانا چاہیے, کیونکہ دنیا کے معروف ترین واقعات کا اگر یوں انکار کیا جائے گا تو پھر تو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ معاذ اللہ جنہوں نے کہا کہ تاریخ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی ہستی نہیں گزری, اس نام کی کوئی ہستی نہیں ہے. اسی طرح اگر واقعہ کربلا کا انکار بھی اسی طرح کیا جائے تو پھر تو جو ہے نا وہ سارے کے تاریخ کا انکار کر دیا جائے. واقعہ کربلا تواتر کے ساتھ مروی ہے اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے. ہاں اس کی جزیات کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ واقعہ اس میں یہ بھی ہوا تھا, وہ جو فردن فردن واقعات ہیں اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ یہ کہا یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سند صحیح سے ہے تو یہ سند ضعیف سے ہے, لیکن اوور آل جنرلی واقعہ کربلا کا انکار کر دینا تو یہ تو سوائے جنا پاگل پن کے کچھ اور نہیں ہے.
ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے کہ صحابہ کو کہا جائے کہ یہ در والے ہیں اور اہل بیت کے بارے میں کہا جائے یہ گھر والے ہیں؟
دیکھیں جملوں کے بعض اوقات مفاہیم درست ہوتے ہیں, اس کا سیاق و سباق جو ہے نا اس کو بدل دیتا ہے. اہل بیت کا ترجمہ ہی گھر والے ہیں. اہل بیت, بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر, اہل کا مطلب والے, تو اہل بیت کا ترجمہ ہی گھر والے ہیں تو لہذا یہ تو بالکل ایک لفظی ترجمہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور جو گھر والے نہیں ہوتے وہ باہر والے ہوتے ہیں. اب وہ باہر والے ہوں اور در کے ساتھ عقیدت رکھیں تو وہ در والے بھی کہلا سکتے ہیں. تو ہم دربار والے, ہم دربار میں حاضر ہونے والے, یہ بات ٹھیک ہے. تو الفاظ کے اعتبار سے ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے, لیکن اس کو اگر یوں تقابل کے اندر بیان کیا جائے کہ نہیں جناب وہ گھر والے, یہ در والے, اور گھر والے کا مرتبہ در والے سے زیادہ ہوتا ہے, اور اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ صحابہ کرام کا مرتبہ اہل بیت سے کم ہے, تو یہ بات غلط ہو جائے گی. اس میں عقیدہ اہل سنت کی نفی ہے, کیونکہ اہل سنت کا جو مجمع علیہ اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل, اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, اور اس کے بعد امت کی اکثریت کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اہل بیت جو بقیہ ہیں وہ ان کے بعد ہیں, ان کا مرتبہ ان کے بعد ہے. तो लिहाजा अब इसके तकाबुल में ये लफाजी और इस तरह की चर्ब जुबानी के साथ बात की जाए तो वो बातिल है, वो मर्दूद है, वरना फी नफसी बात दुरुस्त है कि अहले बैत का मतलब ही घर वाले होता है।
ये कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, मेरे पास उनकी एक पुरानी तस्वीर है, तो क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ, उस तस्वीर को देख सकता हूँ, क्या इसकी वजह से मेरे वालिद को तो तकलीफ नहीं होगी?
तस्वीर की ताजीम जो है ये तो नाजायज है, और ताजीम के तौर पे उसको संभाल के रखना ये भी नाजायज है। तो लिहाजा अगर ये सूरत है तो फिर तो बहरहाल वो नाजायज ही है, और अगर ताजीम की सूरत नहीं है और बहरहाल उसमें यूं इस अंदाज में रखा जाए कि जिससे वाज़ेह हो कि ये ताजीम की सूरत नहीं बनती, तो उसके जवाब की सूरत हो सकती है। लेकिन जो तस्वीर पेपर के ऊपर है, जो प्रिंटेड तस्वीर है, उसको बहरहाल जो है वो ना ही रखा जाए तो बेहतर है।
मुजम्मिल भाई हैं, पूछ रहे हैं कि ये अकीदा रखना कि सबसे अफजल अल्लाह की जात है, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है।
देखिए ये तो मुसलमानों का अकीदा ही है, अल्लाह ताला की शान वराउल वरा है, अल्लाह का और बंदों का तो ये मुकाबला जो है ना वो किया ही नहीं जाता। और बहरहाल अल्लाह ताला की जात खुदा की जात है, वो हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, खुदा माबूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम अब्द हैं, खुदा मस्जूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम साजिद हैं, खुदा खालिक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम मखलूक हैं, खुदा मालिक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के ममलूक हैं। तो ये तो बिल्कुल एक ताल्लुक की नौइयत ही जुदा है। हाँ ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम खुदा से मोहब्बत फरमाते हैं और खुदा सारी कायनात से बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत फरमाता है, और अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात पर फजीलत अता फरमाई, सारे फरिश्तों से, सारे नबियों से, सारे रसूलों से अफजल हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनाया।
एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि योम आशूरा की क्या फजीलतें हैं रिवायात में?
योम आशूरा के फजाइल में बहुत सी रिवायात हैं। एक रिवायत जो है ये बिल्कुल वाज़े सरी सही अहदीस तय्यबा के अंदर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने यहूदियों को आशूरा के दिन रोज़ा रखते पाया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम ये रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा कि आज के दिन यानी 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात अता फरमाई थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमसे ज़्यादा तो हम मूसा अलैहिस्सलाम के हकदार हैं कि हम उनको सच्चा नबी मानते हैं और सही तरीके से नबी मानते हैं। तो फरमाया कि हम भी रोज़ा रखेंगे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा और ये फरमाया कि आइंदा साल ये मौका मिला तो इसके साथ एक दिन आगे का या एक दिन पीछे का दिन मिला लिया जाएगा, यानी 10 मुहर्रम के साथ या तो 9 मुहर्रम का रोज़ा मिला लिया जाए और या 10 के साथ 11 मुहर्रम का रोज़ा मिला लिया जाए। तो ये खुद हदीसे तय्यबा में साबित है। तो इस दिन का ये एहतमाम कि इस दिन को बावकार और मुअज्जम जानना और बतौर ख़ास इस दिन को साहिब फजीलत समझते हुए इसका रोज़ा रखना और इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की याद होना, और इसके अलावा फिर बाकी जितने वाक़ियात हैं उनकी याद भी हो सकती है कि सालिहीन का की याद, उनका तस्किरा, तो ये फजीलत की चीज़ है। तो ये हदीस तय्यबा से साबित है।
आतिफ शेख भाई हैं, पूछ रहे हैं कि अगर किसी को अपने हर अमल और बात से कुफर के वसवसे आते हों, यार मैंने ये गलत कह दिया, इस पर ही कुफर होगा, तो ऐसे शख्स के बारे में क्या कहेंगे?
ऐसे के बारे में ये है कि इल्मे दीन सीखे ताकि उसको इस्लाम और कुफर का फ़र्क पता चल जाए, और जब इल्म होगा तो वसवसा उतना कम हो जाएगा, क्योंकि वसवसा आता है या जहालत की वजह से और या उसके तिब्बी वजूहात भी होती हैं, कोई खलल दिमागी है, नफसियाती मरज है, बाज़ का मैदे की खराबी, तबखीर मैदा, उसके बुखार, दिमाग को चढ़ते, उससे भी वसवसे आते हैं। लिहाजा हाल ये है कि इल्म दीन ज़्यादा से ज़्यादा सीखे ताकि जितना इल्म, इल्म रोशनी है, और रोशनी क्या होती है, रोशनी रोशन कर देती है, वो चीज़ों को वाजे कर देती है। तो क्या इस्लाम है, क्या कुफ्र है, जब इल्म होगा तो वाजे हो जाएगा, जब वाजे हो जाएगा तो वसवसा ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा लाहौल शरीफ की कसरत करना ये भी वसवसों को दूर करता है।
बारिश का जमा हुआ पानी अगर कपड़ों को लग जाए, जिस्म को लग जाए, तो इसका क्या हुक्म है?
सिर्फ बारिश का पानी है तो उसमें तो वैसे ही हर्ज नहीं है। बारिश का पानी जो है वो तो बतौर खास बरकत वाला भी है, पाक करने वाला भी है, और उसके तो पाक करने का तस्किरा जो है कुरान और हदीस में मौजूद है, उसके बरकत वाले होने का तस्किरा कुरान पाक में मौजूद है। तो लिहाजा बारिश के पानी का तो कोई ऐसा मसला नहीं है। असल मसला ये होता है कि सड़कों के ऊपर जो पानी जमा हो जाता है, कि जिसमें गटर का पानी मिल जाता है, वहाँ पर मसाइल हो गए। अब उसकी फिर तफसील है, तफसील उसकी ये है कि गटर के पानी के साथ मिल गया और उसके अंदर बदबू है, जो गंदगी की, गिलासत की, नजासत की बू है, यानी कि नजासत के आसार जो है पानी में नज़र आ रहे हैं, या उसकी शदीद बू जो है जो नजासत की होती है वो है, या उसके जर्रात नज़र आते हैं, तो ये नापाक है। हाँ ये है कि वो बड़ा कसीर पानी है, जैसे सड़कें भर जाती हैं तो दह दरदा या माए जारी जिसे कहते हैं कि जारी पानी है, कि सड़कें जो हैं वो बिल्कुल तालाब बनी हुई हैं, बल्कि तालाब भी शायद छोटी चीज़ होगी, यानी ऐसे लग रहा था जैसे नहरें जारी हैं। तो ये जो पानी है ये माए जारी है, तो ये पानी जो है ये पाक है, इल्ला ये कि उसमें नजासत यूं हो कि अगर चुल्लू लिया जाए तो उसमें नजासत का जर्रा आए, तो ये फिर नापाक होगा, वरना इतना जो वसी और इस पानी होता है ये पाक होता है।
फरीद हुसैन भाई कह रहे हैं कि वाकिया करबला पढ़ने के लिए कोई मुस्तनद किताब जिसमें मुस्तनद तरीके से वाकिया मौजूद हो।
उलमाए अहले सुन्नत की बहुत सी किताबें हैं इस मौजू पर, और एक बड़ी मशहूर किताब जो है वो सवानह करबला, तो ये भी मौजूद है। इसी तरह शामी करबला ये भी मौजूद है। तो मौलाना हसन रजा खां अली रहमा की जो किताब है वो, या सदर और फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, और या फिर हजरत मौलाना मौलाना शफ़ी ओकाडवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब भी इस मौजू पर मौजूद है, और इसके अलावा भी और बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी।
अब्दुल कयूम भाई हैं, पूछ रहे हैं कि क्या अजाबे कब्र हक है और क्या ये हर मुसलमान को होगा?
कब्र में अजाब का होना या नेमतों का मिलना, तनईम कब्र या ताजीब कब्र, ये बरहक है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, और इस अकीदे का इनकार गुमराही है। जो ये अकीदा रखे कि कब्र में जजा सजा सजा कुछ नहीं होती, वो गुमराह है, वो अहले सुन्नत से खारिज है। ठीक, अब ये है कि क्या ये सब मुसलमानों को होता है, तो भाई अजाब कब्र तो सब मुसलमानों को नहीं होता ना, कोई किसी गुनाहगार को अजाब भी हो सकता है, लेकिन जो नेक हैं या जिनको कोई या वो इसाले सवाब की वजह से या किसी की दुआ की वजह से जिसको नजात मिल जाएगी, तो उसको अजाबे कब्र नहीं होगा, उसको नईमे कब्र होगा, यानी कि उसको कब्र की नेमतें मिलेगी, जन्नत की नेमतें मिलेगी। तो लिहाजा अजाबे कब्र और नईमाते कब्र या तनईमे कब्र ये हक है, ये अकीदा अहले सुन्नत है, और मुसलमानों में किसी को सजा भी होगी और बहुत सारों को जजा भी मिलेगी, नेमतें भी मिलती हैं।
अब्दुल मुस्तफा भाई हैं, पूछ रहे हैं कि बाद लोग यजीद को अच्छा कहते हैं, तो उनके बारे में क्या हो?
यजीद को अच्छा कहने वाले यजीदी ही हो सकते हैं, जालिम को अच्छा कहने वाला खुद जालिम है, और जो जिसकी तारीफ करता है तो वो उसी के साथ शामिल है, जो जिसकी ताईद करता है वो उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। तो यजीद को अच्छा कहना जो है ये किसी यूं कह लें कि सख्त दिल गुर्दे वाले का काम है, मजबूत दिल गुर्दे वाले का नहीं, सख्त दिल गुर्दे वाले का काम है कि यजीद जैसा जालिम आदमी और फासिक व फाजिर आदमी, कि जिसके फिस्क व फुजूर पर अहले सुन्नत का इजमा है कि वो फासिक था, फाजिर था, बल्कि जिसके बारे में उलमा की एक तादाद है जो उसे काफिर कहती है, हम जो अहनाफ हैं और जो जमहूर अहले सुन्नत है वो सुकूत इख्तियार करते हैं, यानी कि वो काफिर कहने से सुकूत इख्तियार करते हैं, लेकिन उसकी जिसकी फिस्को फुजूर की ये शिद्दत हो कि जिसके जालिम और फासिक और फाजिर और पलीद और दीन में रखना अंदाजी करने वाले और अहले बैत पे जुल्म ढाने वालों का साथ देने का सिर्फ इल्ज़ाम नहीं बल्कि साबित जुर्म है, उसके बारे में ये कहना कि वो ठीक है, वो सही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो उसने जुल्म सितम किया वो ठीक है। तो अब जो ये जुल्म सितम ठीक कहे कि अहले बैत को शहीद कर दिया, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तारण को शहीद कर दिया, उनका सर तन से जुदा कर दिया, उनके बदने मुबारक पर घोड़े दौड़ा दिए और उनकी जो नाश मुबारक है उसको रिजा रिजा कर दिया, और जिनके सर को नेजे पर बुलंद किया गया, तो अगर कोई इसको ठीक कहता है तो वो तो अपने दीन ईमान को देख ले कि उसका कलमा उसने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। तो लिहाजा ये बड़ा एक सख्त जुमला है कि यजीद को यूं बरहक कहा जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ दर्ज करूंगा। बास लोग कहते हैं कि भाई वो यजीद ने थोड़ी इमाम हुसैन को शहीद किया। यजीद तो अपने वहां था दमिश्क में। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को तो जो शहीद किया है वो इब्ने ज़ियाद ने किया है। इब्ने ज़ियाद कूफा का गवर्नर था। तो इब्ने ज़ियाद ने लश्कर भेजा और उस लश्कर ने जाके शहीद किया। तो यजीद का तो इसमें अमल दखल ही नहीं है। अब ये एक अजीब वसवसा अंदाजी है। बात यह है कि इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला को शहीद किया। क्या इस सारे वाक़े के बाद यजीद ने उन कातिलों को कोई सजा दी थी? क्या इब्ने ज़ियाद को उसके ओहदे से फारिग कर दिया था? क्या जिस लश्कर ने ये शर अंगेजी और शैतानियत की थी, क्या उसमें किसी एक बंदे को कोई मामूली सी भी उसने सजा दी थी? तो जब उसने कुछ भी नहीं किया तो फिर कैसे कह सकते हैं कि यजीद जो है वो इस फेल पे राजी नहीं था? क्या जो मुल्क का हुक्मरान है, क्या उसका यही काम होता है कि जो जुल्मो सितम भले जितना मर्जी बड़ा हो जाए और वो बाद में बस ये बोले कि ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, और इतना कह के वो फारिग हो जाए? क्या दुनिया का कोई कानून है कि जो ऐसे हुक्मरान के बारे में ये कहे कि यार देखो ना, उसने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी? क्या ये, अगर उसने ये दो चार जुमले बोले भी थे, तो क्या ये जुमले बोलने से क्या उसने हक अदा कर दिया था? क्या उसने सजाएं दी थी उन लोगों को? जब नहीं दी थी तो फिर कैसे कह सकते कि शरीके जुर्म नहीं था?
नौशाद अली भाई ये पूछ रहे हैं कि घर की बुनियाद में बकरी का खून डालना बरकत के लिए।
जानवर जबह करना राह खुदा में सदका और खैरात के लिए ये तो ठीक है, कोई बुजुर्गों के इसाले सवाब की नीयत है तो भी ठीक है। बाकी उसका खून बतौर खास बुनियादों में डालना ये बेमाना है और ये बेअसल है। खून के अंदर ऐसी कोई बरकत नहीं है। राह खुदा में कुर्बानी करने की बरकत हो सकती है और उसका गोश्त सदका करना और गरीबों को खिलाना, इसकी बरकत हो सकती है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लम। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल, आज जो कुछ हमने इस सिलसिले में सुना है, बयान किया है, ए अल्लाह इसकी अच्छी बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और जो ख़ताएँ हुई उसे माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो अच्छा दर्स दिया सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हों का सदका, ए अल्लाह उनकी शहादत का सदका, ए अल्लाह हमारे दिलों को मजबूत फरमा, ए अल्लाह सब्र और इस्तिकामत की दौलत अता फरमा, ए अल्लाह आफियत की ज़िंदगी अता फरमा, ए अल्लाह तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का सदका मुसलमानों के हाल पे रहमु करम फरमा। ए अल्लाह तमाम दुनिया के मुसलमानों पे रहमु करम फरमा। ए अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान जुल्म का शिकार है, ए अल्लाह इस माह मुहर्रम के वाकयात का सदका, इसमें यादगार हस्तियों का सदका, ए अल्लाह सबको जुल्म व सितम से निजात अता फरमा। अल्लाहुम्मा ला तक्तुलना बे गज़बिका वला तुहलिकना बे अज़ाबिका وعافنا قبل ذلك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين।
علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا علم نافع ملے از پائے علماء علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا